तो आज का हमारा श्लोक है तीसरे स्कंद का अध्याय 24 श्लोक संख्या 16। वेद अहम आघम पुरुषम अवतीर्णम स्वमायया भूतानां शिवधिं देहं बिभ्राणं कपिलं मुने वेद अहम आघम पुरुषम अवतीर्णम स्वमायया भूतानां शेवदिं देहं बिभ्राणं कपिलं मुने वेद अहम आघम पुरुषम् अवतीर्ण स्वमायया भूतानां शेवदिं देहं बिभ्राणं कपिलं मुने माता जी को पढ़ना चाहते हैं। इसका अनुवाद पढ़ेंगे। हे कर्दम मुनि, मुझे ज्ञात है कि अब आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अंतरंग शक्ति से अवतार रूप में प्रकट हुए हैं। वे जीवात्माओं के सभी मनोरथों को पूरा करने वाले हैं और उन्होंने अब कपिल मुनि का शरीर धारण किया है। तात्पर्य बहस दिवाइन विद श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद देखिए, इस श्लोक में पुरुषोत्तम अवतीर्ण स्वमायाया शब्द आए हैं। श्री भगवान सनातन पुरुष हैं, भोक्ता हैं और जब वे प्रकट होते हैं तो इस भौतिक शक्ति से कुछ भी ग्रहण नहीं करते। आध्यात्मिक जगत उनकी निजी अंतरंगा शक्ति का प्रकटीकरण है, जबकि ये भौतिक जगत उनकी भौतिक या भिन्न कृति शक्ति का प्रकटीकरण है। सो माया या शब्द सूचित करता है कि जब कभी श्री भगवान का अवतार होता है तो वे अपनी स्व शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। वे मनुष्य का शरीर धारण कर सकते हैं किंतु वे शरीर भौतिक नहीं होता। इसलिए भगवत गीता में स्पष्ट उल्लेख है कि केवल मूर्ख तथा धूर्त अर्थात मूढ़ ही श्री कृष्ण के शरीर को सामान्य मनुष्य का शरीर समझते हैं। शेविधम शब्द का अर्थ है कि वे समस्त जीवों की आवश्यकताओं को प्रदान करने वाले हैं। वेदों में भी उल्लेख है कि भगवान प्रधान पुरुष हैं और अन्य जीवों की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं। अन्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के कारण वह ईश्वर कहलाते हैं। परम पुरुष भी व्यक्ति हैं, वह निराकार नहीं है। जिस प्रकार हम पृथक पृथक व्यक्तित्व हैं उसी प्रकार भगवान भी पृथक है। किंतु वे परम पुरुष हैं। ईश्वर तथा समान जीवात्माओं में यही अंतर है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति स्वब्दकांतिकं। वन्देहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांसं श्री रूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नाम। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतार। हरे कृष्णा। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें शुरुआत श्लोक की होती है वेद से शुरुआत होती है। वेद अहम आगम। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं वेद मतलब जानता हूँ, अहम मतलब मैं, आगम मतलब शुरुआत। तो भगवान वेद हैं। तो ज्यादातर हम देखते हैं संसार में लोग वेद ज्ञान को पढ़ने के लिए बड़े जिज्ञासु होते हैं, है ना। और ज्यादातर लोग ये प्रश्न भी बोलते हैं कि आपने वेद पढ़े हैं, है? आप लोग वेद पढ़ते हैं, वेद पढ़े हैं कि आप लोगों ने। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान निराकार नहीं है। तो एक संस्था है आर्य समाज जिन्होंने भगवान को निराकार घोषित कर रखा है। उसके जो संस्थापक आचार्य हैं, जानते हैं कौन है आर्य समाज के संस्थापक आचार्य? हाँ जी, कौन? दयानंद सरस्वती। वो बचपन में उनका नाम था मूल शंकर जो थे उनके पिताजी ने उनका नाम शंकर इसलिए रखा था क्योंकि वो शंकर के उपासक थे, शिव के उपासक थे। और एक दिन रात्रि शिवरात्रि थी, जैसे शिवरात्रि होती है रात्रि भजन होता है महाशिवरात्रि, तो उनके पिता ने कहा था महाशिवरात्रि में क्या करो, शिव की उपासना करो, सब लोग कीर्तन करेंगे। तो महाशिवरात्रि में सब लोग शिव उपासना में लगे थे तो उनको सेवा मिली कि पूरी रात में रुक करके कीर्तन करो यहाँ पर। तो रात में रुके थे, मूल शंकर की सेवा थी रात में 2 बजे से 3 बजे तक कीर्तन में रुकने की, रात्रि कीर्तन। तो मूल शंकर रुके थे और उन्होंने देखा कि जो शिवलिंग के ऊपर बर्फी आदि मिठाई चढ़ाई जाती है वो आकर के एक चूहा लेकर के मिठाई लेकर भाग गया है। तो मूल शंकर ने ये बुद्धि लगाई कि मेरे पिता इनको परम परमात्मा परमेश्वर कहते हैं, जब ये परमेश्वर अपनी मिठाई की रक्षा नहीं कर सकता ये क्या ब्रह्मांड की रक्षा करेगा, ये कैसे भगवान हो सकता है जिनको वेदों में भगवान कहा गया है। तो मुझे अब वेदों में से ढूंढना है ये नहीं कि भगवान कौन है, मुझे ढूंढना है कि मूर्ति पूजा कैसे गलत है। और इस प्रकार से उन्होंने ढूंढा कि भगवान ने वेदों में लिखा कि मेरी प्रतिमा नहीं होती है। भगवान ने कहा मेरी प्रतिमा नहीं होती, भगवान ने कहा मेरी प्रतिमा नहीं होती है, मैं तो साक्षात होता हूं, मतलब ये मेरी मूर्ति नहीं है, ये मैं साक्षात हूं। जैसे चेतन चरितामृत में भी साक्षी गोपाल लीला में आप सुनते हैं कि आता है प्रतिमा नाही तुम्हें साक्षात व्रजेंद्र नंदन, तुम प्रतिमा नहीं हो, तुम तो साक्षात भगवान हो, और जो भगवान को पत्थर मानता है वो मूर्ख है, भगवान साक्षात सामने खड़े होते हैं। लेकिन ये हमारी कह सकते हैं दुर्भाग्य है कि इतना सब श्रवण करके अध्ययन करके भी हम भगवान के प्रति आसक्त नहीं हो पाते। श्रील प्रभुपाद की बहुत विशेष कृपा है कि उन्होंने हमें श्रीमद् भागवत जैसे, ये श्रीमद् भागवत जैसा इतना सुंदर अनुवाद दिया, वरना संस्कृत भाष्य से हम समझ पाए ये बहुत मुश्किल था हमारे लिए। तो मूल शंकर समझ नहीं पाए, उन्होंने कहा यस ना प्रतिमा आस्ती, मेरी प्रतिमा नहीं होती है। तो भगवान की वो श्लोक लेकर के उन्होंने पूरी एक संस्था की रचना कर दी कि भगवान निराकार होता है, भगवान कह रहे मेरी प्रतिमा नहीं होती है, मूर्ति पूजा जो है वो गलत है। जबकि भगवान कहना चाहते थे ये मेरी प्रतिमा नहीं होती है, मैं तो साक्षात होता हूं। तो उस चीज को ना समझते हुए उन्होंने, वो उनके जीवन का परिवर्तन था, वहां से उनके जीवन में वैराग गया कि भगवान ये मूर्ति अगर अपनी रक्षा नहीं कर सकती तो हमारी क्या करेगी, और एक पूरा समाज की रचना हो गई। और उसका मूल क्या था, वेद। लेकिन वेद का मतलब यहां पर भागवत में वर्णन है, वेद मतलब जानता हूं। अब वेद का मतलब है जानता हूं। भगवान ने गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा वेदश्च सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदवच्चा अहम, वेदों का कृत करने वाला, वेदों को रचने वाला भी मैं हूं, और वेदों में जानने योग भी मैं हूं। वेदश्च सर्वम अहम एव वेद्यो, वेदों में जानने योग भी मैं हूं। अगर हम वेद का सीधा सीधा आंसर समझें तो वेद का मतलब है ज्ञान, और वेद ना होने का मतलब है, वेद के आगे अगर ना का शब्द लगा दें वेदना, और वेदना अगर हिंदी का वेदना शब्द का मतलब समझे तो क्या होता है, तकलीफ दुख परेशानियां। तो इसीलिए संसार में वेदना है, तकलीफ है, दुख है, क्योंकि लोगों के पास वेद नहीं है, वेद मतलब ज्ञान नहीं है, है ना। तो ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद ये वेद बाद में वेद व्यास जी के द्वारा चार भागों में विभाजित किए गए, परंतु वेद का मतलब है ज्ञान, है ना। इसीलिए वेद को यहाँ पर प्रभुपाद जी इसका मतलब लिख रहे हैं जानता हूं। भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, एक्चुअली ब्रह्मा जी कर्दम मुनि से कह रहे हैं कि हे कर्दम मुनि मुझे ज्ञात है, वेद मतलब मैं जानता हूं कि आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतार लेते हैं। तो यहां पर ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि से कहा कि आपकी जो 9 पुत्रियां हैं वो साध्वी हैं और वो आगे वंश का वर्धन करेंगी, तो जिन जिन वंशों में उनका विवाह होगा उनका वो वर्धन करेंगी, और आपका जो पुत्र होगा वो पुरुषोत्तम अवतीर्ण स्वमाया, वो पुरुषोत्तम भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कपिल भगवान स्वयं स्वमाया, स्व मतलब अपनी ही अंतरंगा शक्ति के द्वारा अवतीर्ण होंगे। तो भगवान की 2 माया है, एक स्व मतलब अंतरंगा, एक बाहर बहिरंगा माया। बहिरंगा माया से हमको संसार में बार बार भगवान की माया हमको घुमाती है संसार में, प्रेक्षात्मिका शक्ति भगवान की, और एक भगवान की अंतरंगा शक्ति है जो व्यक्ति को महात्मा बनाती है, और एक शक्ति दुरात्मा बनाती है ना। देखा जाए तो आत्मा दुरात्मा नहीं होती है, आत्मा तो सच्चिदानंद है, लेकिन फिर ये दुरात्मा शब्द और महात्मा शब्द का क्या मतलब है? दुरात्मा का मतलब है जो आत्मा इस संसार के भोग विलास में लगी है वो दुरात्मा है, और जो आत्मा भगवान की सेवा में लगी है वो महात्मा है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा महात्मनस्तु माम पार्थाम देविम प्रकृतमाश्रितम, जिसने श्रीमती राधा रानी की शरण ली, भगवान की अंतरंगा शक्ति की शरण लेके राधा कृष्ण की सेवा में लगा है वो व्यक्ति क्या है, महात्मा है। और जो बहिरंगा शक्ति की शरण में लगा है, इंद्रिय तृप्ति में लगा है, भोग विलास में लगा है, इंद्रिय इच्छा की वांछा में लगा है, वो सही वक्त में दुरात्मा है, चाहे वो किसी भी वस्त्र को धारण किए हो लेकिन दुरात्मा कहलाता है। इसीलिए पुरुषम का मतलब है, यहां पर हम समझें पुरुषम मतलब लिख रहे हैं प्रभुपाद, पुरुषम मतलब भोक्ता।
तो भोगने वाले सिर्फ भगवान है। अगर हम भोगने की अभिलाषा रखते हैं और हम सोचते हैं कि मैं पुरुष हूं, तो ये सही मायने में अपने आप में ही एक दुरात्मा भावना है। तो आत्मा तो सच्चिदानंद है, लेकिन ये भावना कि मैं पुरुष हूं, मैं भोग सकता हूं, ये दुरात्मा है। पुरुष मतलब भगवान, भोगता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोकाम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांतिम प्रगच्छति। ये व्यक्ति जान जाता है कि भोगने वाले कौन है, भगवान कृष्ण है, इसलिए पुरुषम का मतलब लिखा भोगता। अवतीर्णम भगवान अवतरित होते हैं स्व माया या अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतार लेकर। तो भगवान सनातन पुरुष है, भौतिक शक्ति से वो अपनी कुछ भी कर सकते हैं भगवान। और यहाँ पर लिखा शेवधिम, शेवधिम मतलब भगवान हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। फिर भी कई ऐसे मूर्ख हैं जो भगवान को क्या मानते हैं, मनुष्य मानते हैं, है ना। कई बार लोग भगवान का उपहास भी करते हैं और इस बात से प्रश्न भी करते हैं, बहुत ही ज्यादा बहस भी करते हैं कि आप कैसे बोल सकते हैं कि कृष्ण परम भगवान है, नारायण को फिर भी कई लोग विष्णु को परम भगवान मानते हैं परंतु कृष्ण को परम भगवान नहीं मानते। कहते हैं अरे उनके तो पांव में तीर लगा था, उन्होंने बाली को छुप करके मारा था, इसलिए उसका कर्म बंधन के कारण कृष्ण को भी क्या करना पड़ा, बलका तीर्थ गुजरात में जाकर उनके पांव में तीर लगा, इसलिए उनको भी तीर खाना पड़ा है। क्या करें, कर्म गति टारे ना टरी, ऐसे करके बोलते रामचरितमानस में लिखा है कि कर्म की गति टालनी नहीं टाली जा सकती है। कर्म की गहनो कर्मणा गति, कर्म की गड़ी बड़ी, कर्म की गति बड़ी गहरी है। देखो रामचंद्र जी को भी वनवास जाना पड़ा और देखो उन्होंने छुप करके बाली को मारा, तो कृष्ण को भी छुप करके एक बहेलिया ने क्या किया, उनके पैर में तीर मार दिया। और देखो राम को भी, कृष्ण को भी कितनी बड़ी मार्मिक मृत्यु सहनी पड़ी। अभी उस व्यक्ति से पूछा जाए प्रश्न कि अगर किसी व्यक्ति के पैर में ब्लेड लग जाए, तीर मतलब एक ब्लेड हो गया ना, शार्प ब्लेड, श्री राधा गोविंद भगवान की जय, किसी व्यक्ति के पैर में ब्लेड लग जाए तो किसी की मृत्यु हो सकती है, पैर में एम्प्यूटेशन होती है, एक सर्जरी होती है, पैर का कट जाना, पैर का फ्रैक्चर हो जाना, पैर में इंफेक्शन हो जाना, एम्प्यूटेशन, पैर को काट करके बाहर निकाल दिया जाएगा परंतु इससे व्यक्ति मर नहीं सकता। और वो तो भगवान है कहा गया, हाँ हाँ वो तो बहुत महापुरुष थे जो गिरिराज गोवर्धन उठा सकते हैं, जो जरासंध जैसे इतने महाशक्तिशाली राजा को हरा सकते हैं, जो पूरी द्वारकापुरी का निर्माण कर सकते हैं, सुदामा के लिए सुदामापुरी का निर्माण कर सकते हैं, 16,108 रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं, इतने सारे मल्ल योद्धाओं को है ना, शल तौशल मुष्टिक चांडूर को हरा सकते हैं, कंस जैसे महाबलशाली जो चक्रवर्ती सम्राट था, पूरे विश्व विजयी हो गया था, उसको हरा सकते हैं, और इतने सारे राक्षसों को बचपन में ही मार सकते हैं, तृणावत को मार सकते हैं, इससे भगवान के लिए क्या बहुत मुश्किल है कि वो अपने पैर के अंदर से एक तीर जो है उसका इन्फेक्शन को दूर नहीं कर सकते हैं। पैर में इन्फेक्शन ही तो हुआ तीर लगने से, सर्जरी करवा लेते, वैद्यों की कमी थी क्या द्वारका में, सब कुछ था, एक वैद्य नहीं था। लेकिन भगवान लीला करना चाहते हैं, अपनी पलायन लीला, भगवान कहते हैं भौतिक संसार के लोग जाने और इसी माया शक्ति से भारंगा शक्ति के अंदर रहकर मुझे ना पहचान सकें, वही पहचान सकें जो फिल्टर होकर के मेरे सच में शरणागति होकर के मेरे भक्त बनना चाहते हैं, वो भगवान चाहते हैं, है ना। इसीलिए भगवान छन्न प्रछन्न रूप से छुपे रहते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जो सच में शास्त्रों का अध्ययन करें, किसी भक्त के शरणागत हों, वही इन लीलाओं को समझ पाए, सभी लोग ना समझ पाए इसको। तो ऐसे लोग कहते हैं, भगवान ने गीता में भी कहा, अवजानन्ति मामूढ़ाम मनुष्यम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान कहते हैं अवजानन्ति मामूढ़ाम, मूढ़ाम मतलब मूर्ख, मुझे मूर्ख समझ नहीं पाएंगे। 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा अवजानन्ति मामूढ़ाम, अवजानन्ति मतलब नहीं जान पाएंगे मुझको मूर्ख। मनुष्यम तनुम आश्रितम, और वो उपहास करते रहेंगे, भगवान तो मनुष्य शरीर लेके आए थे, भगवान को तो जन्म हुआ ना जेल के अंदर। एक जगह लिखा गया है भगवान अजन्मा है, तो भगवान का जन्म कैसे हो गया? और जब जन्म नहीं हुआ, एक तरफ भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्त्वतः, भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं भगवान का जन्माष्टमी जन्म मनाया जाता है, तो भगवान का कोई जन्म नहीं होता है, भगवान प्रसूति ग्रह की तरह ऐसे डिलीवरी पेन्स के साथ में जन्म नहीं लेते हैं। तो जो लोग मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, वो व्यक्ति कभी समझ नहीं पाएंगे भगवान की भगवत्ता को समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहां पर कि कुछ लोग भगवान को, यहां पर कपिल मुनि प्रकट हुए हैं भगवान की स्व माया या अंतरंगा शक्ति के द्वारा। इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर शब्दों का चुनाव किया अंग्रेजी ट्रांसलेशन में, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। अब ये तीन शब्दों में अगर कोई समझे तो अपने आप में ये पूर्णता विख्यान है। सुप्रीम मतलब होता है जिसके ऊपर कुछ नहीं, अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें सुप्रीम मीन्स कि उसके इक्वल कुछ नहीं होता है, इक्वल भी कुछ नहीं होता है, टॉप मोस्ट। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम मीन्स सुप्रीम कोर्ट का अगर जजमेंट आ गया, नथिंग इज इक्वल, टॉप मोस्ट, इक्वल भी नहीं होता है सुप्रीम के। बोलते ना ब्रह्मा विष्णु महेश, कृष्ण के साथ और भगवान, सुप्रीम मीन्स टॉप मोस्ट, नथिंग इज इक्वल सुप्रीम। फिर बोला पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी मतलब ये इम्पर्सनल नहीं है, निराकार नहीं है भगवान, कोई अग्नि स्वरूप, कोई ब्रह्म ज्योति भगवान है, पर्सन पर्सनैलिटी जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं, रिश्ता जोड़ सकते हैं, पर्सनैलिटी। और फिर बोला गॉड नहीं है, गॉड्स ईश्वर तो बहुत हैं, गॉड हेड, गॉड्स के भी हेड हैं, शिवजी ईश्वर हैं, गणेश ईश्वर हैं, दुर्गा ईश्वर हैं, ईश्वरों के भी परमेश्वर हैं विष्णु, और उन परमेश्वर के भी परात परमेश्वर हैं आदि भगवान कृष्ण। तो इस प्रकार से ये जो सेंटेंस सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड अपने आप में पूर्ण व्याख्यान करता है कि कृष्ण जो है उनकी क्या पर्सनैलिटी है, वो कौन है। शैव धीम शब्द का अर्थ है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो सभी की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, और शास्त्रों में भी लिखा है, इवन अगर आप देखेंगे मुस्लिम शास्त्रों में भी लिखा है, बाइबल शास्त्र में भी लिखा है, कृष्ण जो इनके स्क्रिप्चर्स हैं, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, मनुष्य को भगवान की स्वरूप में बनाया गया, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, है ना, व्यक्ति को भगवान के स्वरूप में बनाया गया। अगर भगवान तो व्यक्ति कैसा है, दो हाथ वाला, नाक हाक कान वाला, तो भगवान कैसा है, वैसे ही तो है भगवान, कोई ऐसा नहीं है कि उसके 16 हाथ हैं, है ना, या फिर बहुत शक्तिशाली है। जैसे जब श्रील प्रभुपाद विदेश में प्रचार कर रहे थे और प्रभुपाद ने कहा कि चित्र बनाइए भगवान का, कि भगवान ब्रह्मांड को धारण करते हैं, तो एक माता जी ने प्रभुपाद जी का, भगवान का जब चित्र बनाया तो भगवान को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली मसल मैन बनाया, और एक हमने देखा एटलस बनाते ना, एटलस पूरा ग्लोब विश्व को धारण किए हैं, तो बहुत मस्कुलर मैन, बॉडी बिल्डर बना दिया। प्रभुपाद जी ने कहा भगवान ऐसे नहीं है, भगवान 16 वर्ष के नव यौवन है, उनकी उनको ये मसल की आवश्यकता नहीं है ब्रह्मांड को उठाने के लिए। भगवान की यही भगवत्ता है कि वो 16 वर्ष के नव यौवन बालक जैसे दिख करके भी ब्रह्मांड को उठा सकते हैं, इसीलिए वो भगवान है। अगर भगवान को रोज जिम जाके मसल बनानी पड़ती और फिर उसके बाद वो दम लगा करके ब्रह्मांड को उठाते तो फिर वो भगवान थोड़ी रहते, यही भगवान की भगवत्ता है। तो यहां पर सोच रहा था कि भगवान के साथ में किस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन को आकर्षित करते हैं, भगवान सर्व आकर्षित करता है, इति कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं, कि जब भगवान जा रहे थे अपने अरण्य वन के अंदर राम के रूप में, जो हमारे पास तो दोनों विग्रह हैं, तो ये लीला आप अच्छे से समझ पाएंगे। भगवान जब राम लक्ष्मण वन में थे तो अरण्य कांड रामायण में ये लीला आती है। रामचरितमानस लें या रामायण लें, वर्णन आता है कि अभी ये 27वां मनवंतर चल रहा है, 27वां चतुर्युग चल रहा है, 7वें मनवंतर का, और इसके 24वें चतुर्युग के अंदर ये त्रेता युग में लीला हुई भगवान राम की, तो कितने 3 चतुर्युगी और घूम चुके हैं। और 27वें चतुर्युग के द्वापर युग में कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं, है ना, और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो भगवान राम जब 24वें चतुर्युगी के त्रेता युग में आए तो उस समय भगवान राम और लक्ष्मण बहुत ही सुंदर युवा अब सीता मैया के साथ में वन के अंदर थे, अरण्य कांड में आप जानते हैं। और वहां पर एक राक्षसी आई थी जो कि रावण की बहन थी, क्या नाम था उसका, उसका नाम था शूर्पणखा। तो वह शूर्पणखा क्यों नाम था उसका, क्योंकि उसके नाखून सूप के जैसे थे, जिसमें गेहूं को छानते हैं ना, खड़े हो जाते हैं गाँव में जो अभी तो हार्वेस्टिंग मशीन आती है, पहले गेहूं को छानने के लिए उसके जो बीज के ऊपर का छिलका होता है वो हवा में उड़ जाता है और फिर वो ऊपर से नीचे गिराए जाते हैं। तो जो सूप होते हैं, इतने बड़े बड़े नाखून थे, इतने विशाल थे वो सूप जैसे नाखून, सूप नखा, इसलिए उसका नाम था शूर्पणखा। सूप नखा आई थी और वो आकर्षित हो गई थी राम और लक्ष्मण के रूप को देख करके, और वो विवाह करना चाहती थी राम लक्ष्मण से, आप जानते हैं। सबसे पहले वो राम भगवान को, इस क्योंकि भगवान राम का नाम ही है आकर्षण करने वाले, भगवान जो भी भगवान के रूप को देखता है वो आकर्षित हो जाता है, तो इतनी आकर्षित हो गई भगवान से विवाह करना चाहती थी। और आकर के भगवान से कहती है, तुम सम पुरुष मो सम नारी, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है और मेरे जैसी कोई नारी नहीं है, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं, और अपने को विख्यात नारी बता रही है, कहती आई एम द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट, तो बेस्ट के लिए बेस्ट, हम दोनों का जोड़ी जो है ना वो बेस्ट है, हमें क्या कर लेना चाहिए, विवाह कर लेना चाहिए। और फिर कहती है कि देखो मुझे इस संसार में बेस्ट पुरुष की तलाश थी, अब जाकर के मुझे मिला है तुम्हारी जो ये शरीर की संरचना है बड़ी क्योंकि भगवान क्षत्रिय रूप में है ना, धनुष बाण और ऊपर से जब क्षत्रिय वेश में रहते थे तो ढके रहते थे, अभी तो बेयर बॉडीड है भगवान, तो पूरा एकदम दिख रहा है उनका शरीर, शक्तिशाली स्वरूप में खड़े हैं भगवान। तो तुम सम पुरुष नमो सम नारी, मेरे जैसी कोई नारी नहीं है और तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है। तो वो कहते हैं कि भगवान नहीं नहीं देखो मैंने तो एक नारी व्रत धारण किया है, मेरे पास एक पत्नी है, सुंदर है, सुशील है, तुम मेरे लघु भ्राता मेरे छोटे अनुज लक्ष्मण के पास चली जाओ, वो तुमसे प्रेम करेंगे, तुमसे विवाह करेंगे, और उनकी पत्नी तो अयोध्या में है, वो विवाह कर सकते हैं, उनके पास चले जाओ। लक्ष्मण के पास गए और कहा कि जाओ इसके पास में, इसके जैसा तो कोई पुरुष ही नहीं है इस संसार में। लक्ष्मण ने कहा मैं तो दास हूं भगवान राम का, अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगी तो तुम्हें दासी बन के रहना पड़ेगा, राम से विवाह करोगी तो रानी बन के रहोगे। बोलो रानी बनोगे कि दासी बनोगे, मैं तो भैया भाभी के पैर दबाता हूं, तुम्हें भी पैर दबाने पड़े। अगर तुमने अभी वर्णन किया कि तुम्हारे जैसी कोई नारी नहीं है संसार में और ना इतनी ऊंची रानी होकर के तुम्हें दासी बनना पड़ेगा, तो ये ठीक हमारा क्या कहते हैं बिजनेस डील नहीं है, जाओ तुम भैया के पास। फिर राम के पास गए, फिर जाकर के कहते हैं पुनः फिर राम निकट सो आई, फिर राम के पास में आ गई दोबारा से, पुनः फिर राम, राम के पास आ गए पुनः। अभी राम से आके कहती है दिस इज टू मच, अभी बहुत हो गया है। फिर राम से लक्ष्मण, लक्ष्मण से राम, मैं नहीं जा सकती। पुनः फिर राम निकट सो आई, राम के निकट आके कहती है अभी फाइनल करिए आप विवाह करेंगे कि नहीं करेंगे। राम कहते हैं कि ठीक है देखो मैं विवाह के लिए तो तैयार हूं, लेकिन क्या है मेरी पत्नी साथ में है और पत्नी एक पत्नी के साथ में होते हुए दूसरी पत्नी से विवाह करना ये तो लीगल एक्शन हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसकी पत्नी साथ नहीं है तो मैं लक्ष्मण के पास ही जाना चाहिए। तो फिर लक्ष्मण के पास जाती है, जब लक्ष्मण के पास जाती है तो भी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। फिर लक्ष्मण कहते तुम्हारे भैया रिजेक्ट कर रहे हैं, अब तुम्हें तो करना ही पड़ेगा, ना फोर्स करती है। तो लक्ष्मण क्रोध में आकर के फिर उसकी नाक काट देते हैं, फिर वो गुस्से में चली जाती है, वो सब प्रसंग आप जानते हैं। परंतु भगवान राम ने जब उसको रिजेक्ट किया, भगवान को देखिए भगवान असुर को रिजेक्ट भी कर रहे हैं, तब एक चीज प्रदान कर दी है भगवान ने उसको, माधुर्य भाव प्रदान किया, प्रेम प्रदान किया, वो माधुर्य भाव जो गोपियों को प्रदान किया। और वर्णन आता है पुराण में कि वो सूपनखा अपने अगले जन्म में कुब्जा, जो कि आप शास्त्र में पढ़ते हैं, कुब्जा बनती है और वो कंस के राज्य में उनको लेप लगाने वाली कुब्जा, जिसका नाम त्रिव्रकला था, तीन जगह से टेढ़ी थी। तो ये जो त्रिव्रकला थी, तीन जगह से टेढ़ी थी और पीठ पर इसके कुब निकला हुआ था, और भगवान कृष्ण बलराम, वही राम लक्ष्मण, जो कृष्ण बलराम जो राम लक्ष्मण बन के अरण्य में आए थे, वही कृष्ण बलराम जब अक्रूर जी लेकर के कंस वध के लिए वापस मथुरा में आते हैं वृंदावन से और आ रहे हैं कंस वध के लिए, तो रास्ते में कुब्जा मिलती है और हाथ में स्पेशल ऑयल, तेल लिया है और उसमें चंदन भी लगाया है, लेप लगा रखा है, और लेकर के जा रही थी, तो रास्ते में भगवान कृष्ण का दर्शन होता है। अब भगवान कृष्ण का दर्शन हो जाने से उसका पुनः वो जो माधुर्य भाव अटका हुआ था वो जागृत हो जाता है। देखते ही भगवान कहते हैं, भगवान को तो सब मालूम है, परात परमेश्वर है, सब कुछ जानते हैं, हृदय में बैठे हैं परमात्मा रूप, कहते हैं कहाँ जा रही हो, कौन हो तुम? कहती मैं कुब्जा हूँ भगवान, मैं कंस के महल में, राजा कंस के महल में क्या करती हूँ, उनको चंदन तेल आदि लेती हूँ, सुगंधित तेल लगाती हूँ, और आज बड़ा स्पेशल इवेंट है वहां पर, आज बड़े बड़े मलयुद्ध आएंगे, मुझे चंदन लगाने जाना है। तो कहते हैं भगवान क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें हमें चंदन लगाना चाहिए? तो कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं भगवान, आपका तो सुंदर मुखमंडल, कितना सुंदर लगेगा ये सुगंधित चंदन लगा के। तो वर्णन है कि दो प्रकार के रंग के चंदन थे, पीत वर्ण और नील वर्ण का चंदन था। पीले रंग का चंदन उन्होंने भगवान कृष्ण के मस्तक पर लगाया और नील वर्ण का चंदन उन्होंने बलराम के मस्तक पर लगाया। दोनों जिस प्रकार के कलर के कपड़े पहनते हैं, वस्त्र आदि, वैसा ही चंदन लगाया। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर इस लीला से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान की थोड़ी सी सेवा करें, खाली चंदन, हम फ्लावर ऑफरिंग करते हैं भगवान को, है ना, लोग कहते हैं भगवान तो मूर्ति को क्या पूजना, भगवान से क्या रिश्ता बनाना, अरे जाओ कुछ ढंग का काम करो। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का न्यूज में आ रहा था, वो बच्चा अपना घर छोड़कर चला गया था, वापिस उसके पेरेंट्स ने 20 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया, जबकि स्कॉन से नहीं था, अक्षय पात्र से था वो, और उसके कारण कई लोग मुझे फोन कर रहे थे, मेल कर रहे थे, आप लोग क्या कर रहे हैं समाज में, देखिए कितनी कुरीतियां आ रही हैं, उसके बाद माँ बाप हैंडीकेप्ड हैं और वो छोड़कर चला गया, जबकि माँ बाप ने इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया था उस बच्चे को, भजन ही नहीं करने दे रहे थे, मतलब शराब पिए तो चलता है लेकिन भगवान का भजन करे, जबकि वो नौकरी करता था, पैसे देता था माता पिता को, लेकिन भजन करने से क्रिटिसाइज करते थे, इसलिए छोड़कर उसने आश्रम ज्वाइन कर लिया। आश्रम ज्वाइन किया तो 20 लाख रुपए मांगे आश्रम से, तो फिर बाद में वापस आश्रम वालों ने कहा भाई 20 लाख तो नहीं दे सकते, तुम घर चले जाओ, और पूरा मीडिया में इतना बड़ा वो बना दिया, और कह रहे भगवान की मूर्ति की सेवा करते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, इतना सब कुछ वो लोग क्रिएट कर रहे हैं, और उसका पूरा हाइप क्रिएट कर दिया। परंतु ये रिश्ते, ये भगवान की ये लीलाओं का आस्वादन नहीं कर सकते, क्योंकि अवजानंती माम मूढ़ाम, मूर्ख व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा भगवान के इस चरित्र को, समझना बहुत मुश्किल है। ये बहुत ही गुहतम लीला है, गुरु की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से कोई व्यक्ति बड़ी सिंसियर एफर्ट्स करे, साधना में बहुत सिंसियर हो, डेली श्रवण कीर्तन करे, तब जाकर के कभी उसके हृदय परिवर्तन होकर लीला समझ में आएगी। भगवान की कृपा हो, भगवान कहते हैं अगर मैं जनाना चाहता हूं तो मैं जान पाते हो कि मैं भगवान हूं, तुम्हारे से रिश्ता है, अगर मैं नहीं चाहूंगा तो कितना भी एफर्ट करना वो जान नहीं पाओगे। इसीलिए हमारा जो मार्ग है वो कृपा सिद्धि का मार्ग है, गुरु की सेवा से गुरु प्रसन्न होंगे तो कृपा होगी तो हम जान पाएंगे, वरना मुश्किल है। और खाली गुरु ही नहीं, गुरु के जो शिष्य हैं, जो वैष्णवा हैं, उनको भी, ये नहीं खाली जब गुरु जी होंगे तो उन्हीं को प्रसन्न करेंगे, गुरु जी के जितने भी शिष्य हैं, और यही नहीं खाली वरिष्ठ, जो कोई भी शिष्य है, सभी को रिस्पेक्ट करना, सभी की सेवा करना, इससे गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं, सबसे कोऑपरेशन से सेवा करना। तो भगवान की छोटी सी सेवा करने से क्या हुआ, भगवान इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, भगवान ने उस कुब्जा के पैरों के ऊपर अपना पैर रखा और उसकी थोड़ी के ऊपर अपना हाथ लगाया। तो भागवत में श्लोक आता है, पद भयाम आक्रमहे प्रपदे दुई उंगलिम उतान पाड़िना प्रग्रहे चिब्बुके अध्यात्मम उदीनन्मतः उच्चते। भगवान ने क्या किया, पद भयम आक्रमहे प्रपदे, भगवान ने पद भयाम अपने पैरों से नीचे पैर दबाए और दुई उंगल उत्तान पाणिना, पाणिना उसके मुख को ऊपर उठाया, प्रग्रह चिबुक अध्यात्म उदी निनमत्तः उच्चते, और पूरा उसको ऐसा सुंदर बना दिया, सारे के सारे लोग उससे जो चिढ़ रहे थे, इरिटेट होते थे देख देख के कि कैसी बदसूरत है, कितनी दुर्गंध आती है, वो इतनी सुगंधित सुंदर, उसका सब लोग आकर्षित हुए देखने लग गए। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम इस भौतिक संसार के, हो सकता है कि लोग हमसे आकर्षित ना हो, हो सकता है लोग हमसे इरिटेट होते हो हमारे गुस्से से, हमारे काम से, हमारे क्रोध से, परंतु एक बार अगर आपने कृष्ण की सेवा कर ली, इनको निराकार ना मानकर इनको साकार मानकर, इनको पर्सनैलिटी मानकर इनकी सेवा कर ली, यहां पर जैसे वर्णन है कपिल भगवान को भगवान मानकर आपने सेवा कर ली, तो भगवान आपको कैसा बना देंगे, कुब्जा की तरह सुंदर बना देंगे, और सुंदर बनाने के बाद में फिर यही लोग, यही संसार के लोग आपको क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। और ये क्रम भी है, भक्त वर्णन करते हैं शुरुआत में यही संसार के लोग जब आप भक्त बनना शुरू करते हैं आपका मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं, है ना, तो ध्यान करना पड़ता है, और ये अनुभव है। शुरुआत में पहला क्रम होता है दे विल क्रिटिसाइज यू, आपका उपहास करेंगे, आपको बहुत कुछ बोलेंगे, है ना, फिर थोड़े समय बाद वही आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग, आपके मोहल्ले के लोग, आपको जानने वाले लोग, वो क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करने के बाद में थोड़े समय बाद आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है अब जो करता रहे, ठीक है बेटा करता रहे, एक्सेप्ट करेंगे, पहला है क्रिटिसाइज करेंगे, दूसरा है एक्सेप्ट करेंगे बट रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तीसरा है एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद में रिस्पेक्ट भी करने लगेंगे कि यार जो कुछ भी करता है यार देखो, है ना, शराब तो नहीं पीता ना, कुछ अच्छा काम तो करता है ना, दुनिया के लोगों से तो अच्छा है ना, रिस्पेक्ट करेंगे। और चौथा है दे विल फॉलो यू, परिवार के लोग ही आपको फॉलो करेंगे, वो भी कहेंगे यार हमें भी माला सिखाओ, और ये अनुभव है, देखते हैं हम भक्ति के घर में ही सारे माता पिता परिवार बहन भाई सब दीक्षा लेते हैं, सोलह माला करते हैं, लेकिन इस परिवर्तन में समय लगता है। तो इसके लिए जरूरी है कि जब पहली सीढ़ी आती है क्रिटिसाइज यू, तब उस समय आपको अपना आचरण भक्त का आचरण रखना होता है। प्रभुपाद जी ने बिल्कुल भगवान की इस लीला को रिप्रेजेंट किया, श्रील प्रभुपाद जी ने बिल्कुल कृष्ण की तरह रिप्रेजेंटेटिव होकर के रिप्रेजेंट किया, भगवान के भक्त को भगवान की तरह रिप्रेजेंट होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो वहां जो उनको अंग्रेजी लोग मिले वो सारे के सारे कुब्जा की तरह तीन जगह से नहीं दस दस जगह से टेढ़े थे, ठीक है, बुरी तरह से टेढ़े कुब्जा की तरह, लेकिन उनके पास में कुछ खुशबूदार लेप था, वो क्या लेप था, उनके पास में शरणागति का लेप था, उनके पास में ज्ञान का, मेटीरियल नॉलेज का लेप था। जितने बढ़िया तरीके से वीडियो प्रभुपाद जी के बनाए गए, क्या आज बनाए जाते हैं, आज इतने YouTube, Instagram, WhatsApp, इतना सब कुछ चल रहा है, उसके बाद भी जितने पॉपुलर वीडियोस, जितने सुंदर तरीके से प्रभुपाद फिल्म्स बनी, आज भी नहीं बन पा रही, क्यों, उसमें फॉरेन नॉलेज थी। जितने बढ़िया तरीके से प्रभुपाद जी के धमाकेदार चैंटिंग रिकॉर्ड्स हुई, धमाकेदार म्यूजिक रिकॉर्ड्स हुए, तो लेप था चंदन लेप, लेकिन प्रभुपाद जी ने वो चंदन लेप लगवाने के लिए, है ना, वो क्या किया, भगवान कृष्ण की तरह कुब्जा से व्यवहार किया, और फिर क्या किया, कुब्जा ने जैसे ही सेवा करी, उन लोगों ने जैसे ही सेवा करी प्रभुपाद जी की, प्रभुपाद जी ने पद भयाम अपने पैरों को उनके ऊपर रख करके आक्रमह प्रपद्ये क्या किया, दुई उंगल उत्तान प्रीति पहाड़, भगवान के दो उंगली लगा करके उन सबको गंदे नाले से उठाकर ये क्या बना दिया, विश्व सुंदर बना दिया, प्रख्यात बना दिया पूरे विश्व में, आज पूरे विश्व में इस्कॉन के भक्त जाने जाते हैं। तो भक्त को अगर वो भगवान का सच्चा भक्त है तो रिप्रेजेंट करना चाहिए सही तरीके से। अगर आप वो क्रिटिसिज्म सहन करेंगे तो थोड़े समय बाद परिवर्तन आएगा। आप देखिए कई लोग भगवान से बहस करते करते ऐसे हो जाते हैं भगवान ही बनना चाह जाते हैं, भगवान ही बनना चाहते हैं। जैसा प्रसंग आता है पौंडरक का, पौंडरक ऐसा हो गया था कि भगवान के जैसे ही बनना चाहता था और उसने नकली क्या दर्जी की दुकान पे जाकर के चार हाथ सिलवा लिए थे है? पीछे या फिर वो क्या कहते हैं फेविक्विक लगा करके, फेविक्विक कहते हैं ना, फेविकॉल तो फिर भी छूट जाता है लेकिन फेविक्विक आजकल वो एड आता है मछली भी पकड़ लेते हैं लोग फेविक्विक से, तो फेविक्विक के चार हाथ लगाए थे और उसमें शंख चक्र कमल गदा धारण कर रखा था और सब धारण करके उसने अपना एक दूत भेजा था द्वारका में और कहा कि अगर चाहते हो द्वारका नाथ तो क्या करो, मुझसे लड़ाई करो। तो भगवान से लड़ाई करना चाहता था, सोचिए आप, और भगवान के लिए दूत भेज देता जाओ मुझसे लड़ाई करो द्वारका नाथ, मुझसे लड़ाई करो, असली वासुदेव मैं हूं, तुम असली वासुदेव नहीं हो। अब भगवान से बहस कर रहा था और दूत को भेजा कि जाओ बताओ कि मैं हूं भगवान, उनको बोल दो कि तुम ये चक्र को अपना सरेंडर कर दो। कृष्ण भगवान को कहता है तुम अपना सुदर्शन सरेंडर कर दो, असली सुदर्शन मेरे पास है, है? ऐसा था। तो लोग आते हैं ना कहते हैं नकली भगवान ऐसे। कभी कुछ दिन पहले मुझे भी कोई लोग बोल रहे थे कि आप लोग कब तक ये लोगों को गुमराह करते रहेंगे, और कई लोग, और ये तो बड़ा नॉर्मल है, सभी लोग बोलते हैं एक चीज, इस्कॉन के लोग पब्लिक को ब्रेन वॉश करते हैं, है ना, हमारे गुरु महाराज को भी बोलते हैं, प्रभुपाद जी को भी बोलते थे कि कब तक इस्कॉन के लोगों का ब्रेन वॉश करेंगे। तो इजोलियंस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज अपने प्रवचन में बोलते हैं कि सच में ब्रेन वॉश करने की जरूरत है, इतने सालों से जब कार का कार्बोरेटर का कचरा आते आते कार्बोरेटर काला हो जाता है तो वॉशिंग की जरूरत पड़ती है, है ना, तो ब्रेन वॉश तो करना पड़ेगा क्योंकि कचरा आ गया है इतना, तो ब्रेन वॉश करके हम एकदम सफाई कर रहे हैं क्योंकि संसार ने क्या कर दिया है, कचरा डाल दिया है, है ना। और आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग उनको गुमराह कर रहे हैं, कचरा डाल रहे हैं उनके अंदर। तो ऐसे लोगों की, जो लोग भगवान बनना चाह रहे हैं, गुरु भगवान, मैं भगवान, ये पत्थर का भगवान नहीं, निराकार भगवान, उसमें उदाहरण पौंडरक है, बोला मैं भगवान हूं, बोला सुदर्शन वापस कर दो दूत भेज करके, कितना शक्ति आ गई उसमें, इतना अहंकार आ गया, भगवान को बोल दिया अपना ये सुदर्शन वापस कर दो, और भगवान बोला मैं ही भगवान हूं, इस बात का क्लेम कर दिया। भगवान को बहुत क्रोध आया, भगवान ने कहा उनके दूत को भागो यहां से, चुपचाप यहां से भागो, मैं अभी आता हूं तुम्हारे पीछे पीछे। और भगवान अपना नंदीघोष रथ लेकर के निकल गए, और ये करुष नामक एक राज्य था वहां का रहने वाला था ये पौंडरक, और इसका एक मित्र था काशी, काशी है ना बनारस, काशी राज इसका मित्र था। करुष राज्य में दो अक्षणी सेना थी और काशी राज के पास तीन अक्षणी सेना थी, महाभारत के युद्ध में 16 अक्षणी सेनाएं थी, तो ये 5 अक्षणी सेनाएं लेकर के भगवान कृष्ण से लड़ने के लिए आए, और इसके पास में सब कुछ रखा था, इसने कुमोदगी नामक गदा रखी थी, सारंग नामक धनुष जो था भगवान का वैसे कॉपी करके बनाया था, शंख भी लगाया था पंचजन नामक नकली, सुदर्शन नामक चक्र भी बनाया था, कौस्तुभ मणि भी लटकाई थी एक स्फुटिक की नकली, है ना, मुकुट भी धारण किया था भगवान की तरह, और नकली श्रीवस्त्र का गोल्डन कलर का पता नहीं पेंट लेके चिन्ह भी बनाया था, श्रीवस्त्र का चिन्ह भी बनाया था, सब कुछ कॉपी किया था एज इट इज भगवान के जैसा, है ना, और कुंडल भी, कुंजमाला भी बनाई थी भगवान के जैसे, है ना, और नाम भी रखा था वासुदेव, है ना, पौंडरक वासुदेव कृष्ण, और कहता है मैं हूं सब कुछ। लेकिन भगवान कृष्ण की इतनी शक्ति थी, भगवान ने जैसे ही अपना सुदर्शन को बोला, भगवान कुछ बोलते इससे पहले सुदर्शन को गुस्सा आ गया, सुदर्शन भागा भगवान के हाथ से निकल करके और तुरंत क्या किया, उसके धड़ से उसके सर को अलग कर दिया और मारा गया तुरंत। सब देखते रह गए सारी की सारी सेना की, आक्रमण बोले इससे पहले राजा मारा गया। आक्रमण बोलने के लिए फायर ही नहीं बोल पाया हमारा कमांडर, इससे पहले ही फिनिश हो गया। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा देखो भगवान की, देखो कितने भगवान करुणा सिंधु हैं, करुणा के सागर है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, भगवान करुणा के सागर हैं, क्योंकि रात दिन भगवान का चिंतन करता था। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कितनी डिटेलिंग में भगवान का चिंतन किया था कि चक्र कमल गदा शंख सब कुछ क्या क्या नाम रटे थे, वैसा वैसा बनाने में कितनी धुरी है। सुदर्शन चक्र में 1000 धुरी है, बीच बीच में ना स्पोक्स, 1000 स्पोक्स सुदर्शन चक्र, सब ध्यान किया था उसने। इतना ध्यान किया कि भगवान ने उसको कृपा करके सारूप्य मुक्ति प्रदान करी, भगवान के जैसा रूप प्रदान किया भगवान ने उसको, और भगवत धाम वैकुंठ लोक गया। सोचो भगवान उस जैसे पापी के ऊपर भी कृपा किए, सारूप्य मुक्ति प्रदान किए। लेकिन जो काशीराज उसकी मदद किया, भगवान उसको नहीं छोड़े, काशीराज का भी वध कर दिए। काशी और काशीराज का जो पुत्र था सुदक्षिण, वो सुदक्षिण जो था वो बहुत गुस्से में आ गया। इतना सब देखकर भी पापी लोग समझते नहीं है, ये सब शास्त्र पढ़ के भी नहीं समझते। फिर शुरू हो गया, बोला काशी विश्वनाथ शिव जी की पूजा करूंगा और ना शिव जी से शक्तियां प्राप्त करूंगा और कृष्ण का वध करूंगा। फिर यही फिर वो दोबारा से टेंडेंसी। इसीलिए कहते हैं हरिनाम खाली पाप नहीं काटता है, हरिनाम पाप करने की प्रवृत्ति भी काटता है। इसलिए हरिनाम सर्वश्रेष्ठ है, सर्व पाप प्रणाशनम, है ना। तो खाली पाप नहीं काटता, पाप काटने की प्रवृत्ति को भी काटता है। तो उस पापी ने क्या किया, उस सुदक्षिण ने काशी विश्वनाथ से पूजा करना प्रारंभ किया। शिव जी प्रसन्न हुए, शिव जी ने कहा बोलो क्या चाहिए। बोले जी मैं ये चाहता हूं कि किसी का वध करना चाहता हूं और वध करने की शक्ति दो, जिसको चाहूं उसका वध करूं। उन्होंने कहा ठीक है आप सबका वध कर सकते हो लेकिन योग्य ब्राह्मण का वध नहीं कर सकते। तो उसने मन में सोचा योग्य ब्राह्मण तो नहीं है, कृष्ण तो क्षत्रिय है, योग्य ब्राह्मण थोड़ी है। हाँ ठीक है, बोला दे दो। लेकिन उसे क्या पता भगवान ब्राह्मण भी हैं, भगवान क्षत्रिय भी हैं, भगवान तो सब कुछ है, है ना, सब कुछ है भगवान। वो ये बात समझ नहीं पाया और उसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया इस वरदान को और पहुंच गया भगवान से लड़ने के लिए। तो ही तुरंत भगवान का सुदर्शन चक्र पीछा करता हुआ आया, उसका भी नाश किया और साथ में शिवजी भी उसको बचा नहीं पाए। इंपॉर्टेंट मुख्य स्थानों पे काशी में उसने सब कुछ ध्वस्त किया। कहते जैसे हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब गिरा था, ऐसा बॉम्ब गिरा काशी नगरी में और सब कुछ ध्वस्त कर दिया भगवान के सुदर्शन चक्र ने, और सुदक्षिण को भी समाप्त कर दिया। समाप्त करने के बाद सुदर्शन चक्र अपना काम करके, जैसे होता है ना मिसाइल फिनिश करके वापिस ब्रह्मास्त्र चला जाता है, ऐसे सुदर्शन सब कुछ समाप्त करके द्वारका जाके बोला भगवान ऑल डन, सारा काम समाप्त हुआ। तो इस तरह से आप समझिए कि भगवान को इतना साधारण लोग समझ रहे हैं, है ना। यहाँ पर लिखा है जिस प्रकार हम पृथक पृथक व्यक्तित्व हैं उसी प्रकार भगवान भी पृथक हैं किंतु वो परम पुरुष हैं। ईश्वर तथा समान जीवात्माओं में यही अंतर है, लेकिन समान जीवात्माएं समझ ही नहीं पाती हैं कि भगवान क्या मुख्य व्यक्ति है, कौन है वो व्यक्ति। तो है पर्सन तो है, लेकिन वो पर्सन हमारे जैसे साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक बहुत ही मुख्य व्यक्ति है और उस मुख्य व्यक्ति का सम्मान मुख्य व्यक्ति की तरह होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले द्वारका में किसी ने एक वीडियो भेजा मेरे को, हमारे जानकार है, मैं जाता हूँ उस सोसाइटी में, तो वहां पर किसी के एक रिश्तेदार हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बड़े क्लोज रिलेटिव हैं। तो उन्होंने एक वीडियो भेजा, उनके घर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए, तो वीडियो भेज रहे थे कि आज हमारे घर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए, बहुत ही खुश, पूरी सोसाइटी ताली बजा रही है, झंडे लगा रही है, फूल लगा रही है। तो उन्होंने वीडियो भेजा, प्रभु जी आज हम बड़े खुश हैं हमारे घर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आया। तो मैंने उनको रिप्लाई में उस ग्रुप सोसाइटी के ग्रुप में लिखा, मैंने कहा कि सोचिए अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आने से आप इतने खुश हैं, किसी दिन आपके हृदय में या आपकी सोसाइटी में सच में कृष्ण आ गए तो कितना खुशी का दिन होगा, आप इस बात को सोच करके खुश होते रहिए, है ना। वो समझ ही नहीं पाते, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की गाड़ी आ रही है, वो झंडे वाली काली गाड़ी, तो उसमें खुश हो रहे हैं और पूरा रेड कारपेट वेलकम कर रहे हैं, और कीर्तन मंडली आती है, भक्ति होती है, संडे कीर्तन प्रोग्राम होता है, गीता क्लास होती है, उसमें ऐसे उदास बैठे रहते हैं, क्योंकि समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कृष्ण कौन है। उसको समझने के लिए शास्त्र बहुत जरूरी है। जिस दिन हम ये समझ गए उस दिन हमारे उल्लास की सीमा नहीं रहेगी, हम उदास नहीं होंगे कि अरे 9 बज गए यार, भागवतम क्लास खत्म होने का टाइम कब हो, कब प्रसाद मिलेगा, खत्म क्यों नहीं होती क्लास, हमें लगेगा कि खत्म क्यों हो गई क्लास, ये भागवतम खत्म क्यों हो जाता है, ये माला जप का टाइम खत्म क्यों होता है, ये दिन 24 घंटे का क्यों होता है। रूप गोस्वामी कहते हैं मेरे 1000 हाथ क्यों नहीं होते, मेरा 1000 मुख क्यों नहीं होता, ये बात हम भी बोलते हैं, ताकि हमारी माला जल्दी फिनिश हो जाए, लेकिन वो इसलिए कहते हैं कि मैं ज्यादा नाम जप कर सकूं, है ना। तो अलग अलग भावना है व्यक्ति की, ठीक है। हरे कृष्णा।